28 अक्टूबर दिन भर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदर। बिहार में तीसरे चरण में 53% मतदान।
लालू भैया के वोट देने के लिए आए हैं सर, यही तो चावल और सब्जी बना के चल आए हैं। दिमाग में तो है इतनी महंगी न हो गया जो क्या कर सकते हैं, जो जुट रहा है जो बना रहे हैं।
दुनिया जहान की में आज नजर रहेगी भारत अफ्रीका संबंधों पर।
स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद बहुत जोर शोर से हमने लिबरेशन मूवमेंट जितने भी थे अफ्रीका के उसका समर्थन किया।
जिक्र होगा नेपाल में पहली महिला राष्ट्रपति के चुनाव का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। आज शाम तक बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के मतदान में करीब 53% वोट पड़े। इस चरण में कुल 50 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। इनमें राजधानी पटना, नालंदा और सारण जैसे अहम चुनाव क्षेत्र शामिल हैं। सत्ताधारी महागठबंधन और विपक्षी एनडीए दोनों के लिए मतदान का ये चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान इस हफ्ते सीरिया के साथ बातचीत में हिस्सा लेगा। ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ शुक्रवार को इस बातचीत के लिए वियना जाएंगे। रूस के बाद ईरान सीरियाई राष्ट्रपति असद का अहम समर्थक है और यह पहली बार सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। सीरिया के विपक्षी दलों ने पहले ही कह दिया है कि ईरान की मौजूदगी शांति वार्ता को और भी उलझा देगी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में दिए गए अपने पहले भाषण में फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने अधिकृत क्षेत्रों में अपने लोगों की हिफाजत के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है। फलस्तीनियों और इसराइलियों के बीच हिंसक संघर्ष एक बार फिर तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति अब्बास को 3 साल पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों द्वारा फलस्तीनी सत्ता सौंपी गई थी। उन्होंने 2 राज्य हल और इसराइल के कथित कब्जे को खत्म करने की समय सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की भी मांग की। ऑस्ट्रिया का कहना है कि वह स्लोवेनिया के साथ अपनी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासियों और शरणार्थियों के प्रवाह पर काबू पाया जा सके। ऑस्ट्रियन रेडियो पर एक वार्ता में गृहमंत्री योहाना मिकलाइटनर ने कहा कि वे सीमा बंद करने की बात नहीं कर रही। ये सिर्फ एक बाड़ लगाने के बारे में नहीं है। हाँ, हम बाड़ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, हम बात कर रहे हैं हमारे देश में व्यवस्थित तौर पर दाखिल होने की तकनीकी संभावनाओं के बारे में। हम अपने देश की सीमा को बिल्कुल बंद करने की बात कतई नहीं कर रहे। ये थे योहाना मिकलाइटनर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पिछले दिनों उत्सर्जन परीक्षण में घपला करने के विवाद में फंसी जर्मन कार कंपनी फोक्सवागन पिछले 15 साल में पहली बार घाटे का सामना कर रही है। इस विवाद के बाद आई तिमाही रिपोर्ट में कंपनी को 3.08 अरब डॉलर का ऑपरेटिंग घाटा हुआ है। जर्मनी के गृहमंत्री टोमास डी माइजीरे ने नौजवान अफगान शरण चाहने वालों से अपील की है कि वे अपने देश में ही रहें और अपने देश के निर्माण में मदद करें। जर्मनी में शरणार्थियों का आना बदस्तूर जारी है और इनमें सीरियाई लोगों के बाद सबसे बड़ी तादाद अफगान लोगों की है। गृहमंत्री ने कहा है कि उन्हें स्वतः ही जर्मनी में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो मानव तस्करों को रिश्वत दे रहे हैं ताकि वे अपनी नावें ऑस्ट्रेलिया की बजाय इंडोनेशिया की तरफ मोड़ लें। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बिहार विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव का एक और अहम पड़ाव आज खत्म हो गया। तीसरे चरण के मतदान में आज 50 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल वोटिंग 53.32% रही। सबसे अधिक वोट बक्सर जिले में पड़े। मतदान शांतिपूर्ण रहा। दोनों ही गठबंधन जीत के दावे कर रहे हैं। पटना से पंकज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
आज सुबह से ही राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। खासकर महिलाओं ने सुबह से ही मतदान केंद्रों की ओर रुख करना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह मैं राघोपुर की ओर रवाना हो गया था, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दियरा क्षेत्र होने के कारण नाव से गंगा नदी पार करके हम राघोपुर पहुंच गए। वहां की जनता भी सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़ी थी। दोनों पार्टियों के समर्थकों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। यहां तेजस्वी यादव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार से है, जिन्होंने पिछले चुनाव में राबड़ी देवी को हराया था। उस समय वे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते थे, लेकिन चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गए। चलिए सुनते हैं राघोपुर की जनता की राय।
इतना ना महंगाई से बाल बच्चा क्या चीज खाएगा, पिएगा, कैसे रहेगा, पढ़ावे में कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे, और बाल बच्चा क्या चीज खिलाएंगे पिलाएंगे।
लालू भैया के वोट देने के लिए आए हैं सर, यही तो चावल और सब्जी बना के चल आए हैं। दिमाग में तो है इतनी महंगी ने हो गया जो क्या कर सकते हैं, जो जुट रहा है जो बना रहे हैं।
51,000 श्रीमती राबड़ी देवी यहाँ से वोट लेके गई, आज तक जनता को देखने नहीं आई कि मेरा 5 साल में कि मेरा जनता जीता है कि मरा कि क्या हुआ, उस उन लोगों को दुख सुख में वो शामिल नहीं हुई। तो लोग यहाँ के जान रहा है कि फिर यह वोट लेके जाएगा वापस नहीं आएगा।
हमको दिमाग में तो है कि लालू भैया के वोट देंगे, लालू भैया जीतेगा तो कुछ संस्था पर आएगा। सब लोग बोल रहा है भैया लोग कि बहुत महंगा है, बच्चा को कोई के कपड़ा नहीं जुटता है, कोई के पढ़ाई के पैसा नहीं जुटता है, तो कोई के खाना नहीं जुटता है, भात सब्जी बनता है, लोग दाल खाने में लगता है, अरहर के दाल कितना महंगाई है।
हम लोग चुन रहे हैं गरीब के नेता सतीश कुमार है, गरीब आदमी को बहुत हेल्प करते हैं, और जो मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल कराए हैं, इसके बारे में बहुत ऐसा काम किए हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं।
इस बीच आरोप प्रत्यारोप और दोनों प्रमुख गठबंधनों के जीत के दावों के बीच बिहार में तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। इस चरण में 50 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए। कुल मिलाकर अभी तक 3 चरणों में 131 सीटों के लिए मतदान समाप्त हो गया है। इस चरण में भी दोनों पक्षों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने पटना में मतदान करने के बाद दावा किया है कि महागठबंधन की जीत तय है।
50 से नहीं, 243 बार महागठबंधन स्वीप कर रहा पूरा बिहार में। पूरा महागठबंधन बिहार के 5 चरण में स्वीप कर रहा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और राज्य में NDA की सरकार ही बनेगी।
बहुमत से हमारा लीड है और ये तीसरे चरण में मेरा विश्वास है कि ये 3/4 की बहुमत तक जाएगा और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। ममता जी आ जाएं, अरविंद केजरीवाल आ जाएं, कोई अपील कर इनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
जिन विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ उनमें राघोपुर और महुआ प्रमुख हैं, जहां से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आज के मतदान के बाद जिन नेताओं के भाग्य का फैसला EVM मशीन में कैद हो गया है उनमें प्रमुख हैं नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव और मौजूदा सरकार में मंत्री और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। पंकज प्रियदर्शी, BBC पटना।
हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव ने बिहार के चुनाव प्रचार पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात की और पूछा कि तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के मतदान को सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, आप BJP को इन चरणों के चुनाव में कहां देखते हैं?
मुझे लगता है हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं और जीत के काफ़ी नज़दीक हैं, और ये जो मौजूदा तीसरा चौथे दौर का चुनाव चल रहा है इसमें तो एक बहुत कंफर्टेबल जीत पार्टी की इसमें संभावित लगती है हमें।
क्या आपको लगता है कि जो टिकट सिलेक्शन हुआ है, जो पूरा प्रोसेस रहा है, वो सब सॉर्टेड है, पार्टी अब कंफर्टेबल?
छोटा विषय है, वो तो पूरा हो चुका है और पार्टी को उसमें कोई तकलीफ नहीं है।
एक इशू रहा है चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के प्रोजेक्शन का, जिसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है स्टेट में भी।
कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आवश्यक नहीं होता कि हम हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर करें, और हमने कई स्टेटों में डिक्लेयर नहीं किया, कई स्टेटों में हम बाद में करते हैं।
क्या ये फैक्ट है कि दिल्ली का जो डिबैकल हुआ उसका आफ्टर इफेक्ट था ये बिहार?
हम 4 चुनाव जीते, जम्मू का जीते, झारखंड का जीते, हरियाणा का जीते, महाराष्ट्र का जीते, एक जगह हार भी गए, तो हार जीत तो चुनाव में होती रहती है।
क्या आपको लगता है कि अगर क्लोज फाइट होगी तो क्या आउटकम होगा इन चुनाव?
मैं इस चुनाव में BJP को काफ़ी कंफर्टेबली प्लेस देखता हूँ।
ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लास्ट फेज में आ गया है और आपको यू हैव टू अप द एंटे?
नहीं, एंटे हम अब बहुत देर से कर चुके हैं और हमारी जीत कंफर्टेबल होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे BBC हिंदी .com के साथ।
भारत की यात्रा पर आए फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि भारत को साथ लिए बगैर अरबों लोगों को इंटरनेट से जोड़ना मुमकिन नहीं है। internet.org और नेट निरपेक्षता के बीच चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि फेसबुक नेट निरपेक्षता का बड़ा पक्षधर है। हरिता कांडपाल की रिपोर्ट।
फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग भारत की यात्रा पर हैं। पिछले महीने अमेरिका के सिलिकॉन वैली में फेसबुक के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क जकरबर्ग की मुलाकात काफी चर्चा में रही थी। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के युवा मुखिया मार्क जकरबर्ग IIT दिल्ली में छात्रों और युवा प्रोफेशनल से बातचीत करने पहुंचे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकित जैन ने सीधा सवाल पूछा कि आप भारत को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि इसके जवाब में मार्क जकरबर्ग ने क्या कहा।
So our mission is to give everyone in the world the power to share what's important to them and to connect every person in the world.
हम इंटरनेट के जरिए दुनिया के हर आदमी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत के बिना ये हो ही नहीं सकता। भारत में करीब 13 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप से भी लोग जुड़े हैं जो कि हमारे ही परिवार में शामिल है। लेकिन भारत में अब भी 1 अरब लोग इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं, तो लोगों को जोड़ने की मुहिम में भारत के लोगों को जोड़ना जरूरी है।
नेट निरपेक्षता और internet.org को लेकर छिड़ी बहस का भी जिक्र हुआ। भारत में internet.org का विरोध करने वालों का कहना है कि इसके तहत कुछ ही वेबसाइटें और सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी और बाकी इससे बाहर रह जाएंगी। इसके विरोध करने वालों का कहना है कि ये नेट निरपेक्षता के खिलाफ है और internet.org से बाहर रहने वाली स्वतंत्र वेबसाइटों और विचारों के लिए ये नुकसानदेह है। इस पर मार्क जकरबर्ग ने कहा कि वो नेट निरपेक्षता के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कई देश इंटरनेट को लेकर नियम बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं और अमरीका में नेट न्यूट्रलिटी के काफी कड़े नियम हैं और वो उनका समर्थन कर रहे हैं।
Yeah, absolutely. So, you know, net neutrality is an important principle, right? And we do a lot to support it, both in terms of
नेट न्यूट्रलिटी एक जरूरी मुद्दा है। हम नियमों के मुताबिक नेट न्यूट्रलिटी के बड़े पक्षधर हैं। हम एक खुला ढांचा बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे कोई भी डेवलपर खुलकर काम कर सके। बस हम देखते हैं कि वो internet.org के नियमों के तहत काम कर रहा है या नहीं।
इस बातचीत में मार्क जकरबर्ग ने इंटरनेट की पहुंच पर खासा जोर दिया। internet.org को लेकर भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भारत में समझा जा रहा है कि इसके तहत कुछ ही सेवाएं मुफ्त मिल पाएंगी, लेकिन ये सच से परे है। मार्क जकरबर्ग
is, you know, we realize that, you know, the internet is expensive to provide, right? I mean, the operators
इंटरनेट काफी महंगा है। इंटरनेट ऑपरेटर अरबों डॉलर सिर्फ इसके ढांचे को खड़ा कर देने पर खर्च करते हैं और सारा इंटरनेट मुफ्त में दिया भी नहीं जा सकता। हम जो फ्री बेसिक्स की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ टेक्स पर आधारित जो चीजें होंगी वही मुफ्त होगा, पिक्चर्स या वीडियो नहीं होंगे।
ये मार्क जकरबर्ग की दूसरी भारत यात्रा है। इस बार मार्क जकरबर्ग ताजमहल का दीदार करने आगरा भी गए। आगरा में ताज के दीदार पर मार्क से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कॉन्फ्रेंस रूम तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अलग अलग देशों में लड़ाई और जंग के स्मारक देखने मिलते हैं, लेकिन ताज तो प्रेम का प्रतीक है। ये काफी खूबसूरत है।
फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग भारत में। भारत में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसका इरादा विदेशियों के लिए किराए की कोक का कारोबार बंद करने का है। अब तक बे औलाद विदेशी दंपत्ति भारत आकर भारतीय महिलाओं को पैसे देते थे और ये सरोगेट माएं उनके बच्चों को जन्म देती थीं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कारोबार की आड़ में गरीब और दलित महिलाओं का शोषण होता था। हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा ने बात की भारत के सबसे बड़े सरोगेसी क्लिनिकों में से एक गुजरात के आणंद के आकांक्षा इन्फर्टिलिटी क्लिनिक की डॉक्टर नयना पटेल से और उनसे पूछा कि वो सरकार के इस कदम को किस तरह से देखती हैं।
दिस इज अ वेरी बैकवर्ड स्टेप आई वुड से। ये सिर्फ नोटिफिकेशन है बट आई एम श्योर द गवर्नमेंट हैज टू रिव्यू अगेन, क्योंकि अभी तो ये बिल वेबसाइट पे पड़ा है फॉर पब्लिक डिबेट और पब्लिक डिबेट को सुनने के बाद करना चाहिए वॉट एवर डिसीजन दे आर टेकिंग। एंड आई थिंक दैट स्टॉपिंग इट फॉर फॉरेनर्स एंड अलाउिंग फॉर इंडियंस इज डिस्क्रिमिनेटिंग अ लॉट। अगर वो एक्सप्लोटेशन समझते हैं तो सब जो इंडियन करे या फॉरेनर करे है, अगर नहीं समझते हैं तो क्यों डिस्क्रिमिनेट करें फॉरेनर्स को इंडियन से। दूसरा, मेडिकल टूरिज्म ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया के जो स्लोगन्स है, वो स्लोगन्स का क्या होगा? गवर्नमेंट ऑन वन एंड वांट्स मेक इन इंडिया, वांट्स मेडिकल टूरिज्म टू बी प्रमोटेड। एंड थर्डली मैं बोलती हूँ कि जो इंडिया की टेक्नोलॉजी, जो इंडिया की एक्सपर्टीज है, जो जिसके द्वारा हम इंडिया को वी कैन पुट ऑन द वर्ल्ड मैप, आई थिंक बाय कटिंग दैट देयर शुड बी चेक्स, देयर शुड बी काउंटर चेक्स, एवरीथिंग, रेगुलेशन शुड बी देयर, बट बैनिंग इज नॉट द आंसर। इनफैक्ट बैनिंग गिव्स अ बैड नेम टू अस, इन द सेंस दैट ये ट्रीटमेंट इंडियन के लिए हो सकती है पर फॉरेनर के लिए नहीं हो सकती, एंड वर्स्ट ये ट्रीटमेंट इंडियन पासपोर्ट के लिए हो सकती है पर इंडियन अगर फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करता है तो उसके लिए नहीं होती है। दैट इज अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन एंड आई फील दैट बैनिंग इज नॉट द राइट थिंग टू मूव अहेड। वी आर गोइंग 50 इयर्स बिहाइंड रादर देन मूविंग फॉरवर्ड।
तो मैम ये बताइए कि ये जो सरकार ने कहा है उसके पक्ष में तो ये जो एक्टिविस्ट हैं वो ये तर्क देते हैं कि गरीबों और दलित महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनका रिक्रूटमेंट होता है उनका इस तरह से, और उनको उतने पैसे भी नहीं मिलते, ये एक तरह से उनका शोषण होता है।
मैं बोलती हूँ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो एडल्ट है, एक एडल्ट फीमेल है और एक एडल्ट फीमेल जिसको बच्चा चाहिए और जिसको पैसा चाहिए, वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है और पेमेंट होता है, तो एक्सप्लॉयटेशन की तो बात ही नहीं। अमेरिका में जहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सरोगेसी केसेस होते हैं, वो भी अमेरिकन कपल्स के लिए नहीं, यूरोपियन कपल, जापानीज कपल, मिडिल ईस्टर्न कपल्स के लिए होती है। तो क्या अमेरिका गरीब देश है? अमेरिका की लड़कियां गरीब है, अमेरिका की लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर अ कंट्री विच इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड और द मोस्ट पावरफुल नेशन सरोगेसी को इतना एक्सेप्ट करती है और 40,000 बेबीज सरोगेसी के तरीके से हर ईयर में बॉर्न होती है, अगर दे कैन डू इट देन वो, तो जो लोग शोषण बोलते हैं उनको पहले जाके वो गरीब महिलाओं को पूछना है कि उनका शोषण होता है कि नहीं, सुनी बातें से नहीं, जाके 100 सरोगेट का इंटरव्यू करे और पूछे उनको क्या फायदा होता है, और उनको पूछे कि ये बंद हो जाएगा तो उनको क्या नुकसान होगा, उनकी जैसी कितनी औरतें जो बारा देख के बैठी है सरोगेट बनने के लिए उनको कितना नुकसान होगा।
आप एक बात बताइए मुझे कि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने ये बैन कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, तो क्यों भारत में क्यों नहीं होना चाहिए बैन? क्या सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा पैसे कमा सकें? अगर आपको तो वैसे भी पैसे मिलते रहेंगे क्योंकि भारतीयों के लिए बैन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ विदेशियों के लिए बैन किया है।
नहीं, सरोगेसी नहीं करते थे तब भी हम पैसे बनाते थे, हमने तो पढ़ा है, तो हम डिलीवरी भी कर सकते हैं, सिजेरियन भी कर सकते हैं, आईवीएफ भी सिंपल कर सकते हैं। सरोगेसी तो एक छोटा पार्ट है, अगर हम 100 साइकिल आईवीएफ की करते हैं तो 25 साइकिल ही हर महीने सरोगेट की होती है, 75 तो हमारे आईवीएफ के पेशेंट्स है ही। पैसों के लिए बात नहीं है, डॉक्टर्स के फायदे की बात नहीं है, मेडिकल टूरिज्म पर से। सबसे पहले अगर सरोगेसी के लिए फॉरेन कपल आता है तो किसको पैसा मिलता है? इंडियन एम्बेसी जो अब्रॉड है, और इंडियन एम्बेसी का टूरिस्ट वीजा के विजविज सरोगेसी के वीजा का पैसा कितना ज्यादा है? बाद में एयरलाइन, बाद में होटल्स, बाद में मेडिकल टूरिज्म, साइट सीइंग, शॉपिंग, जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, टैक्सी में घूमते हैं, उन लोगों को फायदा होता है, वो तो डॉक्टर नहीं कमाते हैं। डॉक्टर का धंधा बंद करने की बात नहीं है, पर एक जो अरेंजमेंट है जिसमें सरोगेट इतना सारा कमाती है, एक दिन में आनंद में 6 सरोगेट जाती है, 50 लाख के चेक जाते हैं, क्या गवर्नमेंट कभी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं?
डॉक्टर नैना पटेल से बात कर रहे थे अनुराग शर्मा। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। नेपाल में पहली बार एक महिला विद्या देवी भंडारी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। 54 वर्षीय भंडारी CPNUML की उपाध्यक्ष हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बीबीसी नेपाली सेवा के महेश आचार्य से पूछा कि विद्या देवी भंडारी की कितने मतों से जीत हुई है।
विद्या देवी भंडारी और फूलबहादुर गुरुंग जो नेपाली कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, वो दोनों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उठे थे, और उसमें आज जो संसद में वोटिंग हुई उसमें विद्या देवी भंडारी जो CPNUML रूलिंग पार्टी के वाइस चेयरमैन भी है, उनको 327 वोट मिला, जबकि कुलबहादुर गुरुंग को वोट मिला 214। टोटल 597 मेंबर्स है और उसमें से केवल 549 ने वोट डाला था, और जो कुछ मधेशी दल है, असंतुष्ट दल थे जो संविधान से असंतुष्ट थे, उन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। और विद्या देवी भंडारी को समर्थन मिला था जो सत्तारूढ़ घटक थे एकीकृत माओवादी जो प्रचंड की पार्टी है, और इसी तरह से और मेजर पार्टी राप्रपा नेपाल, मधेशी जनाधिकार फोरम, लोकतांत्रिक लगायत के जो एक दर्जन से भी ज्यादा बड़ी दलों का समर्थन था विद्या देवी भंडारी को।
महेश ये बताएं, विद्या देवी भंडारी के बारे में कुछ बताएं, इनका राजनीतिक जीवन क्या है, क्या इनकी पृष्ठभूमि है, क्योंकि भारत में कम से कम लोग इनके बारे में कम जानते हैं।
अब विद्या देवी भंडारी ने एक इतिहास रचा है नेपाल में, क्योंकि वो प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई है, और उनका राजनीति तो चार दशक से पहले ही शुरू हुआ था जो एक्टिव पॉलिटिक्स में थी वो। लेकिन उनके जो पति है मदन भंडारी, जो नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे बड़े हस्ती के रूप में चिन्हा जाते हैं, परिचय होता है उनका, उनका देहांत हुआ था 1993 में। उसके बाद वो ज्यादा सक्रिय राजनीति में आई, हालांकि उससे पहले भी वो राजनीति में थी, लेकिन वो एक गृहिणी की तरह से अपने बाल बच्चों को देखती थी और अपने पति को राजनीति के लिए हेल्प करती थी। लेकिन उनके देहांत के बाद वो ज्यादा सक्रिय हो गई राजनीति में। और
ये थे नेपाली सेवा के महेश आचार्य। भारत और अफ्रीका का संबंध देखने के लिए अगर थोड़ा सा भी पीछे जाएं तो 125 या 100 साल यूं चुटकियों में निकल जाते हैं। काफ़ी दूरी होने के बावजूद अलग अलग दौर में इनके लिए पास आने के आधार बनते रहे, कभी आज़ादी का आंदोलन तो कभी रंग भेद और कभी आर्थिक ज़रूरतें। मौजूदा दौर में भारत अफ्रीका को कौन पास ला रहा है दुनिया जहान की में, निखिल रंजन ने इस बार यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान।
भारत अफ्रीका कॉलोनियल टाइम्स में एक दूसरे के साथ काफी जुड़े हुए थे, क्योंकि भारत ने अपने इंडिपेंडेंस को अफ्रीका के साथ जोड़ रखा था और ये कहा था कि भारत तब तक इंडिपेंडेंट नहीं है जब तक अफ्रीका स्वतंत्र नहीं है।
स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद बहुत जोर शोर से हमने लिबरेशन मूवमेंट जितने भी थे अफ्रीका के उसका समर्थन किया।
1980 के दशक में जो रैलिंग प्वाइंट आई वो थी डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए, कि कैसे दोनों रीजन मिलके एक दूसरे के साथ जो आर्थिक सहयोग है और जिससे विकास के लिए एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करें।
जानकारों की ये राय बता रही है कि भारत अफ्रीका का संबंध बदलते दौर में भले ही नए नए आधार चुनता रहा हो, लेकिन हर दौर में दुनिया की दो पुरानी सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ने का बहाना ढूंढ लेती हैं। अफ्रीका में भारतीय राजनयिक के रूप में लंबा समय बिताने वाले शिवशंकर मुखर्जी तो एक भौगोलिक आधार का भी जिक्र करते हैं।
एंशिएंट जमाने में दोनों कॉन्टिनेंट एक थे, उसे गोंडवाना कहते थे, वो अलग अलग हो गया, एक छोटा सा ओशन है बीच में, लेकिन वो ओशन हमें अलग नहीं रखता, हमें जोड़ता है।
स्वतंत्रता आंदोलन, रंगभेद और भूमंडलीकरण से होकर गुजरते रिश्तों की कहानी अब विकास की जरूरतों तक आ पहुंची है, और ये वो मोड़ है जहां सारे मतभेद पीछे छूट जाते हैं। आज एक बार फिर भारत और अफ्रीका उसी दहलीज पर खड़े हैं जहां एक दूसरे की मदद उनकी जरूरत है। अफ्रीका को तकनीक, ज्ञान और कौशल के साथ धन की जरूरत है, तो भारत को खनिज और दूसरे संसाधन की, ऐसे में साथ आने के लिए वजहें ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। यही हो भी रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर अजय कुमार दुबे।
भारत का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। बिजनेस का जो प्राइवेट सेक्टर है उनके रिलेशन अफ्रीका से काफी बेहतरीन होते जा रहे हैं। अभी हमारा जो व्यापार है 70 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर है। हमारी जो वहाँ पे निवेश है वो 35 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर है। भारत का जो आर्थिक कमिटमेंट है वो लास्ट दो समिट में अभी 11 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग है, और इस तरह से इन क्षेत्रों में तो हम काफी अच्छा कर रहे हैं।
भारत और अफ्रीकी देशों के पास आपस में जुड़ने और साथ चलने की इतनी सारी वजहें थीं, तो फिर ये देरी क्यों हुई? आर्थिक संबंध आखिर अब जाकर क्यों परवान चढ़ रहे हैं?
1990 के दशक में हम खुद ही बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। हमारे पास 2-2 बिलियन यूएस डॉलर नहीं थे कि हम 3 महीने के अपने जो आयात के बिल हैं उनको पे कर पाए। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अफ्रीका में कुछ कर पाए, लेकिन जब हमने अपनी स्थिति सुधारी तो हमने उस पर रिस्पॉन्ड किया।
भारत ने बहुत तेजी से अफ्रीकी देशों के साथ कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाया है, लेकिन उसके बहुत आगे हर जगह चीन दिखाई देता है। प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों पर उसने अपनी मुट्ठी भारत के पहुंचने से पहले कस ली है। भारत के मुकाबले अफ्रीका में चीन का कारोबार करीब 3 गुना ज्यादा है और कुछ मामलों में तो उसने एकाधिकार भी बना लिया है। तो क्या भारत यहाँ भी लेट हो गया? शिवशंकर मुखर्जी,
देखिए हम देर से नहीं पहुंचे हैं, ये गलतफहमी हो रही है मीडिया में भी और कभी कभी मैं समझता हूँ सरकार में भी कभी कभी गलतफहमी होती है कि चीन सब जगह आगे दौड़ रहा है हमसे और हमको जल्द से जल्द काम करना चाहिए उस चीन के बराबर आने के लिए अफ्रीका में। ये बात सही नहीं है। चीन भी एक बहुत बड़ा देश है, बहुत उनका GDP हमसे 3 गुना ज्यादा है तो, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, तो जाहिर है उनका भी आर्थिक विकास में, आर्थिक क्षेत्र में तो उनका बहुत लंबा हाथ रहेगा, सिर्फ अफ्रीका में नहीं सारी दुनिया में।
भारत ने अब शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब भी एक लंबा रास्ता बाकी है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब तक जो आर्थिक संबंध बने हैं वो कुछ ही देशों से हैं। 54 देशों वाले अफ्रीकी महादेश में 80% कारोबार केवल 9 देशों से होता है। दिल्ली में इस बार के भारत अफ्रीका सम्मेलन में सभी देशों को बुलाकर भारत ने एक बड़ी पहल की है और वो ऐसा करने वाला अमरीका और चीन के बाद 3रा मुल्क बन गया है।
देखिए साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा इकोनॉमी है, उसके साथ हमारे व्यापार ज्यादा है। नाइजीरिया के साथ सिर्फ हम तेल लेते हैं वहाँ से और थोड़ा कुछ बेचते हैं, लेकिन तेल की वजह से वो हमारे ट्रेड फिगर्स में बहुत ही उभर के आ जाता है। और कुछ और देश हैं जैसे ईस्टर्न अफ्रीका में तंजानिया, इथियोपिया, केन्या, उससे नीचे थोड़ा जाम्बिया वगैरह हैं। हमने कम से कम 30-40 साल वेस्ट अफ्रीका को निग्लेक्ट किया, गलत रीजन के लिए। क्या कि वो फ्रेंच बोलते हैं जी इंडियन बिजनेसमैन जो है वो संभाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं संभाल पाएंगे? चीन नहीं संभालता, दूसरे जापान नहीं संभालता। तो वो हमने 15 करीब साल पहले सबक सीखा और वेस्ट एशिया से एंगेजमेंट बहुत बढ़ा दिया है। एक चीज और मैं कहूंगा, 54 देश को आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं उसमें आप सिर्फ 29 embassies खोले हुए हैं, ये गलत बात है। और एक परमानेंट बेसिस पे, सस्टेनेबल बेसिस पे अगर आप रिलेशंस को बढ़ाना चाहें इकोनॉमी वगैरह, तो ये समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर रोज समिट नहीं किया जा सकता। एम्बेसीज होना जरूरी है, खासकर एक बहुत बड़ा देश जो कि भारत है।
एक मुश्किल ये भी है कि सरकारों के बीच तो संपर्क बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के बीच संपर्क ना के बराबर है। भारत के लिए अफ्रीका अब भी ऐसे लोगों का देश है जिसके बारे में वो बहुत कम जानते हैं, और बावजूद इसके एक ऐसी छवि उन्होंने अपने मन में गढ़ रखी है जो वास्तविकता से बहुत दूर है।
हमारा स्टेरियोटाइप था पश्चिम में कि इंडियन रोप ट्रिक वाले और यू नो साधु संत वाले और ये वो, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक इंडिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। हमारे देश में भी अफ्रीका के बारे में रियल जानकारी बहुत कम है, एकेडमिक स्टडीज भी कम है। फिर मैंने देखा कि कितने हमारे सिमिलैरिटीज कितने हैं कल्चरली, जो ट्राइबल रिलेशनशिप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं लोगों के, भारतवर्ष के प्रति कितना दोस्ती का हाथ बढ़ाना वो चाहते हैं। पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
भारत में अफ्रीका के बारे में अनभिज्ञता बहुत है, पर इसके साथ ये भी सच है कि विवादों की गैर मौजूदगी और सैद्धांतिक मुद्दों पर साथ आते रहने से कम सरकारों के ही बीच आपसी समझ काफी अच्छी है। विकास के मसले पर दोनों के पास जो कुछ है वो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने वाला है, और युवाओं की बड़ी आबादी वाले इन देशों का साथ आना दुनिया के लिए भी बेहतरी की दिशा में ही एक बड़ा कदम होगा। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के मतदान में आज शाम तक करीब 53% वोट पड़े। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान इस हफ्ते सीरिया के साथ बातचीत में हिस्सा लेगा। सीरिया के विपक्षी दलों ने पहले ही कह दिया है कि ईरान की मौजूदगी शांति वार्ता को और भी उलझा देगी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में दिए अपने पहले भाषण में फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने अधिकृत क्षेत्रों में अपने लोगों की हिफाजत के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है। ऑस्ट्रिया का कहना है कि वह स्लोवेनिया के साथ अपनी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासियों और शरणार्थियों के प्रवाह पर काबू पाया जा सके। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।